That is the condition. If it is a proper marriage, Allah subhanahu wa ta'ala will bless any marriage with the elements of muwaddat and rahmat. Love and compassion and mercy towards one another. And this is where we have to realize that, you know, these two elements, Allah subhanahu wa ta'ala talks about it. You know, if you look at the older mufassirin of the early days in the past, they actually have an explanation. They say that, you know, these two elements Allah has divided. Mawaddat and law, He says He creates in the heart of the wife towards the husband. And the element of rahmat and mercy and compassion, He creates in the heart of the husband towards the wife. The reality is that these both elements are created in the hearts of both of them. If you look at the environment that we are, probably this should be reversed. The husbands need the rahmat of their wives more than the past. You know, things have changed now. But the reality of this ayat of Quran is that both elements of muwaddat and rahmat has been created in the hearts of both of them. And as I said, you know, this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala in every marriage. And it's not confined to Muslims only. And the example would be that, you know, suppose we have a family which is converting from Hinduism or Christianity. When they come for conversion and they recite the Kalima, after Kalima, do I recite their nikah? We are not talking about individuals. The couple are coming to convert. A Hindu husband and wife now want to convert to Islam. Or a Christian husband and wife want to convert to Islam. When they come to me to recite the Shahada and recite the Kalima, I will facilitate that as a way of, you know, official recognition that they have become Muslim. That's also not required as such. It is a very personal decision that a person makes. But do I also recite their nikah? No. Their status as married couple from their own religious ceremony in the past will continue as is. We will still consider them to be as husband and wife. Not only that, the children born to them in their own religion at that time before conversion are also considered to be absolutely legitimate children. And so Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about this issue, that He blesses marriages, and this is where we have to realize that, you know, this is something which Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed all couples. If you maintain mawaddah and rahmah, this is where you will have sukoon, peace and tranquility in your marriage life. Salawat upon Allah. It is Allah's gift. He's promised and He gives to every couple in the marriage the elements of mawaddat and rahmat. However, and this is a very big, capital, bold, however, the elements and the feelings and emotions of mawaddat and rahmat are not something, you know, static or solid that it stays just like that. No, the initial elements of mawaddat and rahmat are created by Allah subhanahu wa ta'ala in the hearts of the new couple, but it is for them to preserve it, to strengthen it, to re-energize it, to increase it, and to protect it. Because there is a chance of them decreasing and becoming weak and weak and weak. So Allah gives this promise, but you have to work on it. You know, sometimes we hear these words where it's like, logon ke, you know, rishte jo hai aasman mein bante hain. A match made in heaven. In English also they say, remember, the match might be made in heaven, but the survival and continuity of that match and relationship is not guaranteed by heaven. You'll have to work on it. You will have to keep your elements of mawadda and rahma alive. Revive it, renew it, protect it, increase it. Otherwise, the time will come where it will go down and down and down. And since I talked about it, let me, you know, talk about one more thing which is very common among us. The issue of istikhara. Salawat upon the Iqbal. It is becoming kind of very common among us, especially the Shias from India and Pakistan, that when it comes to the issue of marriage, they look for istikhara. What is istikhara? They ask the Mawlana or somebody to do the istikhara from the Quran to say whether this match is good or not for my son or daughter. And it's becoming a practice where it is now being taught, and by realizing what is happening, because people come to me. So I have the statistics in a way. I have the pulse of what goes on. And I can say that it's becoming like it is wajib. When it comes to marriage, the idea now is developing that as if this is necessary. Let me make, you know, two comments here. Number one, there is nothing which says that in the marriage relationship istikhara is necessary. It is not even something which has been recommended. As a principle, there is a saying in our religious literature where we say al-istikhara ba'da al-istishara. Istishara means to seek mashwira. Istikhara means to seek khair from Allah subhanahu wa ta'ala. And the wording is al-istikhara ba'da al-istishara, which means whether you want to do a business, buy a house, or have a marriage relationship, you first have to go and find the information which are necessary so that you can come to the conclusion by yourself. You have to come to the conclusion based on the information that you have gathered, whether it is business, house, or marriage relationship. If you know a family and you are actually friends with them, or they are related to you, you already know the background. If you don't know that boy or girl specifically, go and ask around. Ask the circle of your family and extended, you know, khandan, and find out, and then make a decision. If you are satisfied with your information about it, then that is where you go forward. There is no need for istikhara. Sometimes everything is good, and then they come for istikhara, and then it's not good. They say, Maulana, do many ke baad dekh sakte hain? Can we see the istikhara after 2 more months? Oh, why did you see istikhara in the first place? If you really, your heart was into it, or you as a family like this proposal, and you've done the background check and everything is good, go ahead with it. Why do you want to do istikhara then again and again until it becomes yes? And so first, there is a problem in this, you know, attitude in the first place. Secondly, and this is very important, istikhara will only tell you that this match between a boy and a girl is good. Istikhara doesn't come with a guarantee of lifetime survival of the marriage. Because people think that way sometimes. So even if istikhara is good, and Allah also creates an element of mawadda and rahmah, the couple have to work on it. There is no guarantee which comes with istikhara or with this mawadda and rahmah that Allah creates in the hearts. There's a situation that I had to recite a talaq. And just when they've gathered there, the part is there, four talaq, the fellow turns to me, and I don't even remember before that. He says, Maulana, lekin hamare shaadi ka istikhara aapne nahi dekha tha. You know, we're sitting here for talaq today, Maulana, but you saw the istikhara for my marriage. So I told him, I didn't give you any guarantees. Istikhara, I just only said that, you know, it's a good match between you and her. But that doesn't guarantee that, you know, you will be able to continue this. You had to work on it. And this is where we have to realize Allah subhanahu wa ta'ala really has, you know, created these elements of mawadda and rahmah, and we'll talk more about it. Salawat brother Iqbal. Can we have a better matchmaker than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? No. In his life, when he got married to Bibi Khadija, Bibi Khadija was very affluent. She had one slave who was very loyal and good in his work. So she basically gifted the slave known as Zayd bin Harisa to Rasulullah. That from today onwards he is your slave and he will be in your service all the time. But the way Rasulullah as a master treated Zayd bin Harisa, the slave, in such a compassionate manner and his akhlaq, that relationship of master and slave changed into something like father and son. Zayd bin Harisa was not slave by birth. His family from Yemen, where they were traveling somewhere, and the robbers basically looked at them and even took this, he was still a child, sold him in the slave market. This is how gradually he ended up as a slave of Bibi Khadija. The father of Zayd, by the name of Harisa, was always looking for his son. Then he got the news that my son is in Makkah, he is a slave of a person known as Muhammad bin Abdullah. This is before Islam. So he comes to Makkah. He says, where is Muhammad bin Abdullah? They told him, he went there. Zayd was not there and he talked to Rasulullah. He said, I would like to buy Zayd from you. He is my son. Rasulullah said, well, if he's your son, there's no issue of buying. I release him. You can take him. He can go back with you. Zayd was called. He saw his father. It must be a very emotional meeting. But surprisingly, when the father says to Zayd, come with me, let's go home, he refused. He said, the akhlaq that I have seen of Muhammad bin Abdullah, I would prefer him over you. Now that I'm free, it is my decision, I'll stay with you and not go home. This is where we see akhlaq al-hasana of the Prophet of Islam. And so the father became so angry, he in a way disowned his own son. He says, I'm announcing that Zayd is no more my son. This is before Islam. Rasulullah stood up. He says, I adopt Zayd as my son. From that day until after Hijrah, when the ayat came where adoption, the way it is known now, was abolished, from that day till that ayat came down, Zayd bin Harisa was known as Zayd bin Muhammad. Not as a real son, but an adopted son. So he was so close to the Prophet. After the Hijrah, they were in Medina. The Prophet then, as a father, decided to get Zayd married. This is where I'm coming to his role as a matchmaker. And whom did he get Zayd married to? Zaynab bint Jahash, who is the cousin of Rasulullah. And this is where we see that, you know, it's very important because this marriage had multiple, you know, purpose. And one of the important was that Zayd was not from Quraysh. Zayd was not from Banu Hashim. As far as the social status is concerned, he was not from among the, you know, elite class. He was a slave of Rasulullah before. Slave of Bibi Khadija. In spite of all differences, if we may use that class, you know, differences there, Rasulullah still decided to get Zayd married to his own cousin, who is an Arabiya, Qurayshiya, Hashimiya. And this was basically to establish the principle that we talked last night. Al-mu'minu kufu al-mu'mina. A believing man is compatible to a believing woman irrespective of their color, the language, the tribe, ethnic background or culture. As long as they are on the same page as far as deen and iman and mazhab is concerned, they are compatible to one another in marriage. Salawat wa rahmatullahi wa So you have Muhammad Rasulullah as the matchmaker between Zayd bin Harisa and Zainab bin Jahash. But what happened at the end? Their marriage unfortunately didn't last. Quran talks about it. Zayd is the only Sahabi mentioned by name in the Quran in the context of his divorce. And this is the example I wanted to present, that you could have the best of matchmakers, you can have the best of istikhara, and Allah has guaranteed the elements of mawadda and rahma in every nikah and marriage. But remember, there are no guarantees. The guarantees are actually on yourselves. You really have to work in order to maintain what we call the elements and the jazba of mawadda and rahma towards one another. Salawat wa rahmatullah. Before I go to Urdu, let me, you know, explain the meaning of mawadda. In Arabic, there are two terms used, as in Urdu also we use this word. In Farsi, one is muhabbat, and the other is mawaddat. What is the difference between the two? Muhabbat is actually that sentiment or feeling or reaction when you see the physical or worldly, you know, husn-e jamal. You see the beauty, you see the wealth, you see the status of the person. And this is where you become impressed by the personality of the individual, which are all good things. But remember, these things are not everlasting. If a person has a status, the status can go down. If the person has wealth, it can go down. Physical beauty you're talking about, when you become old, then what happens? These are all, you know, temporary issues of life. And therefore, you see, if a marriage is based only on muhabbat, which is the appearance of things, whether it's beauty or wealth or status, when those things start fading, even the concept of muwaddat becomes, you know, kamran. Starts fading. Whereas the term mawadda is used for the inner character of a person. When you are impressed by the character and akhlaq and behavior of the person, and the character doesn't change with age. It's not that a person who is good when he's young, according to the progression of the age, the more old this person becomes, his akhlaq and character will go down. He can change himself, of course, to be better or lesser, but the age has no factor there. And what happens as far as mawadda is concerned, that when you look at the character of somebody and you are impressed by it, it's not only muhabbat, it is mawaddat. And what mawaddat actually means is that you start to look at that person as an example for yourself. Or at least you try to bring your likes and dislikes closer to the person where you feel this element of mawaddat. And this is where we have to realize that when Allah subhanahu wa ta'ala, why did He choose this term? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. One of the signs of His power and glory is that He chose spouses from among yourself. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, so that you may gain peace and tranquility in that relationship. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. And He placed in your hearts mawaddat. He doesn't say muhabbat. Because muhabbat zahiri can fade, can become, it could decrease. Whereas mawaddat will be still maintained even if you grow old. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the term mawaddat in this marriage relationship and not the term muhabbat, which is more common in Farsi and Urdu. Salawat. Mawaddat or muhabbat mein farq. Muhabbat jo hai ek bahut hi fitri radd amal hai. Insan jab husn o jamal ko dekhta hai, daulat o sarwat ko dekhta hai, مقام اور حیثیت کو دیکھتا ہے, بہرحال رد عمل ہوتا ہے, امپریس ہوتا ہے, اور اسے ہم محبت کہتے ہیں. لیکن مودت در حقیقت جو ہے اس انسان میں جو آپ کمال دیکھتے ہیں, اس کے کردار میں, اس کے علم میں, اس کے سچائی میں, اس کی امانت داری میں, جو صفات ہوتی ہیں اس انسان کی, اس سے جب انسان متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں ہے صرف, بلکہ it is something more profound, جسے ہم کہتے ہیں مودت. خداوند عالم نے جب آل محمد کی بات کی ہے, رسول اسلام کو جو حکم دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربۃ, ہے لفظ محبت نہیں ہے وہاں. اگرچہ ہم عام گفتگو میں اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں بھائی اہل بیت سے محبت کرو, لیکن خدا کا انتخاب جو ہے لفظ محبت نہیں ہے اس میں. رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ امت والوں سے کہیں لا اسألكم علیہ اجرا, جو محنت ہم نے کی ہے خدا کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے, اس کے سلسلے میں ہم کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں, إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر یہ کہ تم ہمارے قرابت دار سے مودت کرو. اس لیے کہ محبت جو ہے صرف محبت ہی ہے. جہاں آپ نے دوسرے شخص کے فضائل کو اپریشیٹ کر کے آپ خوش ہوئے, مودت وہ جذبہ ہے کہ جہاں صرف خوش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی, آپ نے اپنے کردار کو, اپنی پسند ناپسند کو اس کے پسند ناپسند سے قریب لانے کی کوشش کر دی ہے. یہ جب تاثر ہوتا ہے تو انسان کی محبت جو ہے وہ اور پر رنگ ہو کے مودت کی شکل اختیار کرتی ہے. زلوات پڑھنے ایک بار. I hope I am able to convey the difference here between muhabbat and mawaddat. Muhabbat is only appreciating the goodness on the other side. Mawaddat is actually following and trying to get close in character to the person whom you like. اور اسی لیے خداوند عالم نے اہل بیت کے سلسلے میں صرف محبت کی بات نہیں کی بلکہ مودت کی بات کی ہے. تشیع کی بنیاد مودت پہ ہے, محبت پہ نہیں ہے. इसको जरा वाजे करने के लिए हम कुछ मिसाल आपको देंगे। देखिए, हम शिया हैं। एक फिरका गुजरा है जो तीसरी सदी हिजरी तक था, फिर खत्म हो गया, अहले सुन्नत वल जमात में, जिन्हें कहा जाता था मुतजिला। मुतजिला जो है वो फिरका था अकीदे के एतबार से। अब जो है तकरीबन 99% सुन्नी जो है वो अशायरा है अकीदे में। फिक में बहरहाल वो चार मजहबों में तकसीम हुए हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, लेकिन अकीदे में सब के सब अशरी हैं। लेकिन अशरियत से पहले ये थे मुतजिली, और मुतजिली दर हकीकत वो थे जिन्हें हम कहते हैं तफजीली सुन्नी। तफजीली सुन्नी किसे कहते हैं? ये वो लोग हैं कि जहां अली की बात होती है तो कहते हैं कि रसूल के बाद सबसे अफजल जो है अली हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए कि भाई फिर खिलाफत की तरतीब क्या है, वो कहेंगे नहीं, सबसे अफजल रसूल के बाद अली हैं, लेकिन खिलाफत में वे चौथे हैं। यह है तफजीली सुन्नी। फजीलत के एतबार से, अली के फजाइल से मुतासिर हो कि उनका अकीदा था कि रसूल के बाद अगर कोई अफजल है उम्मत में तो वो अली है, लेकिन खिलाफत के सिलसिले में वो कहते हैं भाई वो चौथे हैं। उनसे पूछिए भाई तो आपकी अक्ल कहां गई? तो वो एक मंतिकी और अकली दलील पेश करते हैं कि भाई किसने कह दिया कि खलीफा होने के लिए अफजल होना शर्त है? उर्दू में खलीफे का लफ्ज जो है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। वो मोतज़िल खैर में तफसील में नहीं जाना, सलावत पढ़ने के बाद। तो सवाल हमारा ये है कि शियों में और मोतज़िला में फर्क क्या है? हम मुद्दत के कायल हैं, वो सिर्फ मोहब्बत के कायल है। वह अली के फजाइल के मोतरिफ हैं, लेकिन अली के मनसब को नहीं मानते हैं, उनकी पैरवी नहीं करते हैं उस मानों में। शियों में और जो गैर मुस्लिम दानिश्वर गुजरे हैं, स्कॉलर्स गुजरे हैं, शोरा गुजरे हैं हिंदुस्तान में, बहुत से हिंदू शोरा पहले भी थे अभी भी हैं, इनके कसीदों को आप देखें अली के सिलसिले में, कमाल है। वो जो अली के कसीदे बयान करते हैं मुसलमान न होते हुए भी, उनमें और हम में फर्क क्या है? वो अली के फजाइल के मोतरिफ हैं, और ये एतराफ जो है ये कोई ढोंग नहीं है, वाकई वो मानते हैं, इसलिए कि वो अली के कमालात से मुतासिर हैं, लेकिन अली को अपना रहनुमा नहीं मानते हैं। मवद्दत का तकाजा यह है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी पैरवी की कोशिश करते हैं। यह फर्क है हम में और दूसरों में। लुबनान का बहुत ही मशहूर राइटर और शायर गुजरा है जो ईसाई था, खलील जिब्रान खलील। वह अपने एक दोस्त की किताब का मुकदमा लिखता था अमीर उल मोमिनीन के बारे में, किताब लिखी थी, उसमें वो लिखता है, अजीब गरीब जुमला है उसका, किसी शिया ने नहीं लिखा इस तरह से। उसका कहना है कि हमने जब अली की जिंदगी का मुताला किया तो हमें खुदावंद आलम की बारगाह से शिकायत है कि खुदावंद अगर अली जैसे इंसान को पैदा करना था तो इस जमाने में भेजता जहां उनकी जरूरत है, ये 1300 साल पहले क्यों भेजा था कि जहां लोगों ने कदर भी नहीं की। तो ये एतराफ है फजाइल का, ये मोहब्बत है उस लेवल पे, लेकिन खलील जिब्रान खलील शिया नहीं है, इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में, अपने उसूल में वो अली की इत्तबा नहीं कर रहा। ये फर्क है मुवद्दत और मोहब्बत में। अहमद बिन हंबल, हम्बली फिक्र के जो बानी थे, उनसे आप एक गुफ्तगू है उनकी बायोग्राफी में, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल जो बेटा है वो लिखता है कि एक बार हमने बाबा से पूछा कि बाबा सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो उन्होंने जो है वो फहरिस्तवार जो सिस्टम है उनका, उन्होंने पहला दूसरा और तीसरा नाम बयान कर दिया। अब वो बेटा जो है अब्दुल्ला बिन अहमद, अब वो इंतजार में था कि शायद अब अली का नाम आए चौथे नंबर पे, लेकिन नहीं, खामोशी रही। तो फिर पूछता है बाबा अली कहाँ आए? तो अजीब गरीब जवाब दिया अहमद बिन हम्बल ने। उसने कहा बेटा तुमने सहाबा की बात की थी, अली तो अहले बैत नबवी में से हैं, उनकी कैटेगरी ही अलग है, लेकिन वो शिया नहीं है। उन्होंने तो अपना फिक्ही मकतब कायम किया, लोग उनके फतवे पर अमल करते हैं, इमाम जाफर साजिद के फतवे पर अमल नहीं कर रहे। बस एक मिसाल हम आपको कनाडा के हवाले से दें, यकीनन अमेरिकन्स कनाडा में के बारे में तो सबको जानते ही होंगे, अगर से आदाद शुमार कुछ और बताते हैं, लेकिन बहरहाल आपके यहां जो है प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम, हमारे यहां जो है मलका है, क्वीन है, वो भी बर्तानिया की, हमारे सिक्के पर उसकी उसकी तस्वीर है, हमारे नोट पे उसकी तस्वीर है, हमारे स्टैंप पे उसकी तस्वीर है, जितने सरकारी दफ्तर में आप जाइए आपको क्वीन की तस्वीर नजर आएगी, लेकिन हुकूमत और इख्तदार किसके हाथ में? उसके हाथ में नहीं है। मुंतखब शुदा जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिना है उनके हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में दर हकीकत वो इख्तदार है, बल्कि गवर्नर जनरल भी जो अपॉइंट होता है क्वीन की तरफ से, नाम यहां से जाता है। तो ये हजरात जो सिर्फ अली से मोहब्बत करते हैं, जो मुवद्दत नहीं करते हैं, अहले बैत के फजाइल को बयान करते हैं लेकिन पैरवी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल कैनेडियंस की तरह हैं। क्वीन की तस्वीर हर जगह है, सिक्के में भी है, नोट पे भी है, स्टैंप पे भी है, सरकारी दफ्तरों में भी है, इख्तदार कुछ नहीं। ये सूफी हजरात की मुसीबत हमारे लिहाज से ही है, फजाइल तो बहुत बयान करेंगे लेकिन अकीदा आप अहले बैत से नहीं लेते हैं, अबुल हसन आशारी से लेते हैं, तफसीर जो है दूसरे सहाबा से लेते हैं अहले बैत से नहीं लेते हैं, हदीस दूसरों से लेते हैं अहले बैत से नहीं लेते हैं, फिक्ह के मकातिब जो है इनके दूसरे अलग हैं छठे इमाम से नहीं लेते हैं, लेकिन कहने को कहते हैं कि भाई हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, हम में और उनमें फर्क समझना चाहिए। फर्क हमारा यह है कि हमारा अकीदा भी अहले बैत से है, हमारे फिक्ह भी अहले बैत से है, हमारी तफसीर भी अहले बैत से है, हमारी हदीस भी अहले बैत से है, और हम अपनी जिंदगी में जब मोहब्बत की बात करते हैं मुवद्दत का तकाजा यह है कि अपने अमल में कोशिश करें कि उनकी इत्तबा और पैरवी हो। सलावात पढ़ने के बाद दिल में सिर्फ मोहब्बत करना ये जो है ये मोहब्बत की बात होती है, लेकिन अमली तौर पे इताअत करना ये तशय्यु है। तशय्यु की अलामत दर हकीकत यही है कि इंसान किसी भी मरहले में जिंदगी के हमेशा अहले बैत के पसंद और नापसंद को दिल में रखता है, फिर वो हमारी अपनी मर्जी की बात नहीं है। अगर इस मसले को हम समझ लें तो हमारी जिंदगी जो है संवर जाएगी। जितने इश्यूज होते हैं बहुत ही आसान हो जाएंगे। उसमें सलमान फारसी को रसूल इस्लाम ने कहा कि सलमान मिन्न अहले बैत, वो तो अरब भी नहीं थे, फारस थे, कुरैश के नहीं थे, बनु हाशिम के फर्द नहीं थे, शादी भी इस खानदान में नहीं हुई थी, जाहिर लिहाज से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्यों कहा? अव्वलीन शियों में इनका शुमार होता है। छठे इमाम से जब पूछा गया कि आप सलमान फारसी का जिक्र जब भी करते हैं बड़े एहतराम से साथ करते हैं, इसकी वजह क्या है? कहते हैं इसलिए कि सलमान ने अपने तमाम ख्वाहिशात और पसंद और नापसंद को अली के पसंद और नापसंद के ताबे कर दिया था। अब फिर सलमान की कोई मर्जी नहीं थी, मर्जी वो थी जो अली की थी। वो मिसाल जो मिलती है कि सकीफा के वाकये के वक्त, उसके बाद जब ये कहा जा रहा था कि बैत करो, मस्जिद के सहन में जो कुछ शिया थे, अम्मार हैं, मिकदाद हैं, अबू जर हैं, सलमान बैठे थे, ये जो यंगर जनरेशन थे इनमें जोश बहुत था, आपस में बात कर रहे थे भाई हमें ये करना चाहिए, तलवार निकालनी चाहिए अली के लिए, ये करें वो करें। सलमान फारसी सबसे बुजुर्ग थे, खामोश बैठे थे। पलट के इन लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपकी क्या राय है? सलमान ने कहा कि यहां राय की बात नहीं है, मेरी नजर जो है फातिमा के घर के दरवाजे पे है, हमें तो ये देखना है कि जब अली आएंगे उनके हाथ में तलवार है या नहीं है। अगर तलवार निकाल के अली आते हैं तो हमारी भी तलवार निकलेगी, और अगर तलवार म्यान में है तो हम जो अली करते हैं वो करेंगे। तो तशय्यु जो है ये समझना चाहिए कि ये मर्तबा बहुत ही अजीम है, और इस मर्तबे को हासिल करने के लिए, साबित करने के लिए वाकई हमें कोशिश करनी है। मासूम नहीं बन सकते हैं, 100% कोई अमल की बात नहीं कर रहा है, कम से कम कोशिश करनी चाहिए ताकि हम मुद्दत के तकाजे को पूरा कर सकें। सलावात पढ़ने पर आइम्मे अहले बैत आइम्मे नूह है। कल हमने एक जुमला कहा था ज़ुहैर क़ैन के हवाले से कि इमाम नूर को जब अंदाजा हो जाए कि इस शख्स में ज़र्फियत है कि इसे सिरात मुस्तकीम पर ला सकें, तो इमाम नूर पूरी कोशिश करता है। एक और मिसाल आज है जिसकी याद के लिए हम लोग जमा हुए हैं। ये जो मंजिलों की बात हमने कल की थी, एक मंजिल मंजिल जरूरत के बाद जहां ज़ुहैर क़ैन आके इमाम से मिले हैं, एक वो मंजिल है जिसका नाम था मंजिल शराफ। वहां रात ये काफिला रुका, अल सबा जो है फजर के बाद काफिला तैयार हुआ कि अपना सफर जारी रखेगा। इमाम ने वो अफराद खुसूसन जो जवान थे जिनको ये असाइनमेंट दिया गया था कि हर मंजिल पे वो मशकीज़ों को भर के, वो जो ऊंट डेडिकेट थे इसी काम के लिए डेडिकेटेड थे, वो उसके ऊपर मशकीज़ों को भरेंगे। उन जवानों को बुलाने के बाद तबरी की रिवायत है, शिया मुअर्रिख़ बात नहीं कर रहा है, वो बयान करता है कि उस दिन हुसैन ने अपने जवानों से कहा कि देखो तुम जो पानी ले रहे हो आज एक्स्ट्रा पानी लेके चलना। उस वक्त लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसी दिन जहर से पहले ये काफिला इस एक जगह पर पहुंचा कि जहां हुर का लश्कर सामने आया है। हुसैन इब्ने अली को मालूम था कि इनकी कैफियत क्या होगी, और इमाम नूर का यह काम होता है कि मुख्तलिफ तरीके से, एक अखलाकी पहलू होता है कि जिस जिस में ज़र्फियत हो उनको अपनी तरफ खींचे। ये लश्कर जब करीब आया है, आप सब जानते हैं लिहाजा बहुत तेजी से हम उन मराहिल से गुजरना चाहेंगे, कि वो जब करीब आए हैं हुसैन इब्न अली ने देखा कि ये सिर्फ सिपाही जो हैं, 1000 घोड़े सवार दस्ता था कैवेलरी फोर्स, न सिर्फ ये कि सिपाह जो है वो प्यासे नजर आ रहे हैं बल्कि घोड़े भी प्यासे नजर आ रहे हैं। फौरन उन जवानों को बुलाते हैं और कहते हैं इस्कुल कौम वारूहुम मिनल मा वरशिफुल खैर तरशीफ, कि इन लोगों को सैराब करो पानी से, और इनके घोड़ों को भी सैराब करो, यहां तक कि आखिरी फर्द इस लश्कर का ऊंट पर था और वो जरा स्लो था आने में, आखिर में पहुंचा है। उसका नाम था अली बिन तुहान। उसकी रिवायत है कि हम आखिर में पहुंचे और हुसैन इब्न अली ने देखा कि जवान जो हैं वो इधर उधर मसरूफ हैं दूसरों को सैराब करने में, तो फातिमा का लाल जो है मशकीजों को खुद उठाता है, उस आखिरी मुसाफिर के पास आता है और उसे भी सैराब करता है, उसके घोड़े को भी सैराब करता है। फिर वो लश्कर थोड़ी दूर पे जाके वो अपना क्याम करते हैं और यहां तक कि जब नमाज जोहर का वक्त आता है, अजान हुई और इमाम ने हुर से पूछा कि तुम नमाज जो है अपने लश्कर की अलग कायम करोगे या हमारे साथ पढ़ोगे। ये पहला इंडिकेशन था कि हुर में बहरहाल दिल के एतबार से साफ इंसान था, गुंजाइश थी कि ये सही रास्ते पर आ सके। उसने कहा नहीं, नमाज हम आपके इख्तदा में पढ़ेंगे। अभी तक हुसैन ने पूछा नहीं है कि तुम दुश्मन की हैसियत से आए हो या दोस्त की हैसियत से आए हो। नमाज इन्होंने जोहर के बाद, जोहर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ी है। इमाम ने नमाज के बाद जो है फिर मुख्तसर से एक तकरीर की जिसमें रसूल की एक हदीस को बयान करते हैं कि अगर तुम ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह को देखो कि जो हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, लोगों पर जुल्म करे, और अगर तुम वहां खामोशी इख्तियार करो और कुछ न करो, न कलाम से न हाथ से, तो कयामत के दिन खुदा अगर तुम्हें उसी के साथ महशूर करे तो शिकायत मत करना। नसीहत तीन एक लिहाज से यजीद हुर के लश्कर के लिए। फिर दोबारा अलग हो जाते हैं, फिर असर का वक्त होता है, असर की नमाज भी इस तरह से हुई और उस वक्त जो है इमाम ने फिर जिक्र किया उन लोगों से, अब बात हो चुकी थी कि ये यजीद का लश्कर है, कि तुम लोगों ने कूफे वालों ने खतूत भेजे हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम कूफा आए तो फिर ठीक है, हम वापस चले जाएंगे। तो उस वक्त हुर कहता है कि मैं अदरी मैं हाज़िहिल कुतुब व रुसुल अल्लती तज़कुरु, ये कौन से खतूत हैं जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हुर उसमें शामिल नहीं था उस खतूत के लिखने में। तो इमाम ने अपने गुलाम उकबा बिन समान जो एक लिहाज से पर्सनल असिस्टेंट था इमाम का आजकल की जबान में कहा जाएगा, उसे कहा कि वो खतूत लेके आओ। तो वो दो बैग लेके आया जिसमें वो खतूत थे जो कूफे वालों ने लिखे थे। तो उस वक्त वो कहता है कि हमें इसका कोई इल्म नहीं है, हमें हुक्म मिला है इब्न ज़ियाद की तरफ से कि जहां आप मिले आपको हम अपने साथ लेके जाएंगे कूफा इब्न ज़ियाद के पास, ताकि आप उसके हाथ में बैत करें यजीद के लिए। उस वक्त इमाम कहते हैं अल मौत अदना इलैक मिन ज़ालिक, ऐ हुर तुम्हारी ये मजाल नहीं है कि तुम हमें इब्न ज़ियाद के पास ले जाओ, और ये एक हिम्मत करने से पहले मौत तुम पर आ जाएगी। और उसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा है जिसको हम अपनी तकरीर से यहां मरबूत करना चाहेंगे कि उस मरहले तक हुर जो है मुहिब था लेकिन उसके दिल में मवद्दत नहीं थी। मुहिब था इस मानों में कि फजाइल का मोतरिफ था अहले बैत का, जानता था इनकी अजमत क्या है। जब हुसैन ने अपने काफिले को आगे बढ़ाना चाहा, उस वक्त जो है हुर अपने लश्कर को लेके सामने आ गया। इमाम ने कहा कि मा तुरीद, क्या चाहते हो। उसने कहा कि हमें हुक्म है कि हम आपको कहीं जाने देंगे नहीं। मौला ने कहा कि नहीं, हमें जहां जाना है हम जाएंगे, तुम रोक नहीं सकते। उस वक्त सिर्फ गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन जब हुसैन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हुर ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और हुसैन के घोड़े के लगाम को पकड़ लिया। बस ये एक लिहाज से अमली तौर पे एक हमला था। और उस पर हुसैन इब्न अली ने एक जुमला कहा है जो अरब मुआशरे में किसी को जो उसकी तौबीख की जाती है, तो इमाम ने कहा कि सकलत का उम्मुक मा तुरीद, कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, यानी बद्दुआ उसके लिए है। तो क्या चाहता है? अब ये बहुत सख्त जुमला था एक लिहाज से, लेकिन तकाजा था जिस तरह से उसने हरकत की थी। उस वक्त खोर को आप देखें, ये जो हम कह रहे हैं कि उसमें मोहब्बत थी लेकिन मवद्दत नहीं थी, उसकी दलील ये है, वो कहता है कि अले हुसैन, अगर आपके अलावा किसी और ने इस पूरी दुनिया अरब में ये जुमला कहा होता तो हम जवाब में वही कहते जो आपने मेरे लिए कहा है, कि मेरी माँ मेरे गम में बैठे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपकी वालदा वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनके बारे में सिवाय खैर के और कुछ हम नहीं कह सकते। इसी से अंदाजा है कि एतराफ था, मोतरिफ था फजीलत फातिमा, अली के बारे में जानता था, हसन हुसैन के बारे में जानता था, लेकिन बहरहाल अभी हिदायत के उस मरहले पर नहीं पहुंचा था। और उस वक्त फिर इमाम ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हुर ने वहां कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है, आप चले जैसे चलना है आपको, यहां तक कि हमारे पास फर्दर इंस्ट्रक्शंस हम हासिल करते हैं इब्न ज़ियाद से। ये काफिला चला, करबला पहुंचे और वहां इब्न ज़ियाद का कासिद आया जिसने हुक्म दिया हुर को वहीं पर रोके, और करबला में काफिला रुक जाता है। ख़याम रहा, चौथी मुहर्रम को उमर बिन साद 4000 घोड़ा सवार दस्ता लेके आया। आहिस्ते आहिस्ते ये मुख्तलिफ कमांडर्स आते रहे, यहाँ तक कि तादाद 25 से 30 हजार लश्कर की हो जाती है आशूर के दिन तक। लेकिन शब आशूर तक हुर को अभी यकीन नहीं था कि जंग होके रहेगी, इसलिए कि उमर अपने साथ भी कोशिश कर रहा था कि ये इस जिम्मेदारी से वो आजाद हो सके, कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन पैदा हो। इसलिए वो भी जानता था कि हुसैन के कत्ल में सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। लेकिन शब आशूर जब शिमर मलून आता है, वो आखिरी मैसेज लेके इब्न ज़ियाद से उमर अपने साथ के नाम कि या जो मिशन दिया गया है उसे पूरा करो, वरना कमांड जो है शिमर के हवाले करो। और फिर वो बात यकीनी हो गई कि अब जंग हो के रहेगी। हुसैन ने एक रात के लिए मोहलत मांगी, हुर के लिए अब यकीनी हो गया कि जंग हो के रहेगी। हुसैन ने हिदायत के एक चिराग उसके सामने रखा था, लेकिन अभी उसने कदम आगे नहीं बढ़ाया था। जब उसे यकीन हो गया कि जंग होके रहेगी, पूरी रात कश्मकश में गुजारता है। मुअर्रिखीन ने उसके फीलिंग्स का बयान खुद के अल्फाज हैं, उखय्यिरु नफ्सी बैनल जन्नति वन्नार, हम अपने को जन्नत और जहन्नम के दोराहे पे पा रहे हैं। सुबह होते होते हुसैन के अखलाक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, और सुबह होते होते वो अपने को अपने लश्कर से दूर करता है, यहां तक कि इतना दूर चला जाता है कि उनके तीर भी वहां तक न पहुंच सके। और उसके बाद उसने अपने घोड़े के रुख को जो है बदला है खयान हुसैनी की तरफ, और जब करीब पहुंचा है तो उसने उस जमाने में जो मिलिट्री साइन थी सरेंडर होने की, अपने सिपर को अपने हाथों से सर के ऊपर रख लेता है। ये अलामत थी कि हम हमला करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम अपने को तस्लीम करने आ रहे हैं। हुसैन ने जब ये मंजर देखा है, अपने असहाब को भेजते हैं जाके हुर का इस्तकबाल करो। असहाब जब करीब आते हैं, देखते हैं कि हुर के जबान पर एक जुमला था, अल्लाहुम्मा हतूबु इलैक, खुदावंद तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने रसूल की बेटी के औलाद के दिलों को तकलीफ पहुंचाई। अभी भी फातिमा का एहतराम देखिए उस जुमले में कि तौबा और इस्तग़फ़ार खुदा से है, लेकिन बात हो रही है रसूल की बेटी के औलाद के दिलों को हमने अजियत पहुंचाई है। हुसैन के कदमों में आने के बाद कहते हैं कि मैंने अपने रब से तो तौबा कर ली है, लेकिन गुनाह जो है हमने आपका किया है। यहां आप आए हैं मेरी वजह से, जो कुछ हो रहा है क्या आप मुझे माफ करते हैं या नहीं करते हैं? हुसैन इब्ने अली ने कहा कि हाँ, मैंने भी माफ किया, मेरे रब ने भी तुझे माफ कर दिया है। अज़ादारा ने हुसैन रवायात में फिर यही मकातिल में यही मिलता है कि जो अस्हाब में जो शहीद हुए हैं इनफरादी जंग में, उनमें सर फहरिस हुर का नाम नजर आता है। और जब उसने इजाजत चाही है और हुसैन ने इजाजत दे दी, जब से हमने मकातिल का मुताला शुरू किया और ये जो फिक्रा हम देखते थे कि हुसैन ने इजाजत दे दी, अक्सर ये सवाल जहन में आता था कि मौला जब हुर दुश्मन बन के आया था तो आपने उसको पानी से सैराब किया है, आज वो मददगार और नासिर बन के आ रहा है, कम से कम थोड़ी देर के लिए उसकी मेहमान नवाजी करें। लेकिन हुसैन इतने मजलूम थे, उस वक्त तो पानी दे सकते थे, लेकिन आज मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं था हुसैन के लिए। बल्कि हुसैन का जवाब शायद यही हो कि जब तक हुर जो है जिंदा रहेंगे, जहां अस्हाब बनु हाशिम की शहादत को देखेंगे, उनका सर शर्म से झुकता चला जाएगा, कम से कम इस अजियत से हम उसको आजाद कर सकते हैं। लिहाजा पहले भेज दिया। अज़ादारा ने हुसैन हुर जो है बहुत सजीव बहादुर थे, जंग लड़ते हैं कई यजीदियों को फिन्नार करने के बाद, लेकिन जब इज्तिमाई हमला हुआ उन पर वो शहीद हो जाते हैं। अज़ादारा ने हुसैन जब वो जमीन पर गिरे हैं, हुसैन अपने असहाब के साथ आते हैं, जमीन करबला पर हुसैन बैठ जाते हैं, हुर के सर को अपने जानों पर रखते है। ये मेराज है हुर, एक रात पहले ये कहां था, आज हुसैन का जानू है और हुर का सर है। उसके बाद हमारे यहां जो रवायात मिलती है, हुसैन इब्ने अली ने अजीब गरीब एक काम किया, एक रुमाल निकालते हैं और पेशानी को खून से साफ करने के बाद उस पेशानी में उस रुमाल को बांध देते हैं। मौला से इतना कहेंगे, हुर जो है ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं और इस रुमाल से कोई फायदा तो नहीं होगा। अजब नहीं कि ये जवाब दे कि अब इन्हें मेरे बाबा और माँ की बारगाह में पेश किया जाएगा। शायद हुर जो है शर्मिंदगी महसूस करे, ये माँ के हाथ का बना हुआ रुमाल है जो हम इनके पेशानी पे बांध देते हैं कि हुर को इत्मीनान रहे कि माँ फातिमा भी तुमसे राजी है। उसके बाद अपने हालों को बदल करते हैं और एक फिकरा बारगाह इलाही की बात बारगाह में बयान करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़हु फिल जिनान, खुदावंदा हुर को अपना मेहमान जन्नत में बनाना। ये फिकरा इसलिए कहा था कि खुदावंदा ये दुश्मन बन के आया था, मैंने मेहमान नवाजी की थी, आज नासिर बन के आया है, लेकिन हुसैन इतना मजलूम है, खुदावंदा मेरी तरफ से इसको अपना मेहमान बनाना। लानतुल्लाह अला القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। खुदावंदा इसको एक बार कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श देना, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदावंदा शियाने अली जहां भी हैं उनको अपने अमान में रख, तकफीरी अफवाज की तमाम सलाहियतों को नीस तो नाबूद फरमा, इमाम के जुहर में ताजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना तस्मीन अलीम मातल हुसैन।